फिर इसके बाद क्या हुआ, नजईना, इस लफ्ज नजईना को 3 दफा बड़ा बड़ा करके अपने नोट्स पे लिख लें। तो आज ये जो मिथ बन चुका है ना कि मुसलमान खत्म हो जाएंगे, मुसलमानों का कुछ नहीं बनना, तो अल्लाह कह रहे जाने नजई ना हो था तो फिर आज नजई ना कुम क्यों नहीं हो सकता। जो इब्राहिम को अल्लाह बचा सकता है, क्या आज उम्मत मुस्लिमा को नहीं बचाएगा? बचाएगा, बिल्कुल बचाता है अल्लाह आज भी। फरमाया मगर हमने इसको बुरी तरह ना काम कर दिया, यानी उनको तो निजात दे दी, और हमने इसे और लूत को बचाकर इस बस्ती की तरफ निकाल लिया जिसमें हमने दुनिया वालों के लिए बरकतें रखी हैं, और हमने उसे इसहाक और याकूब और इस पर मजीद के हर एक को साले बनाया। नोट कीजिएगा, ये अल्लाह की तरफ से तोहफे मिलते हैं, हर कुर्बानी के बाद गिफ्ट मिलता है, जैसे आपको हर इम्तिहान के बाद रिपोर्ट कार्ड के साथ गिफ्ट मिलते हैं ना अगर आप पास हो जाए। जितनी बड़ी कुर्बानी उतना बड़ा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, उतना बड़ा टाइटल। इब्राहिम आग में गए, इम्तिहान था, कामयाब हुए, जब वहां से निकले अल्लाह ने बुढ़ापे में बेटे और पोते की खुशखबरी दी। मैं कहती हूँ आज आप बूढ़े हो जाएं, आप 60-70 के हो जाएं, आपके शौहर भी इससे बड़े हो जाएं, आपको अल्लाह फिर भी औलाद दे सकता है अगर आपके मेरे अंदर हजरत इब्राहिम का सही मानो। बे औलाद शख्स को अल्लाह ने औलाद वाला कर दिया, कब? जब वो आग में अल्लाह के हुक्म से कूद गए। हम रोते ही रहते हैं, डॉक्टरों के पीछे जा रहे हैं, दुखी हैं, सैड है, डिप्रेस है, बच्चे नहीं, बच्चे नहीं, बच्चे नहीं। भाई नहीं है तो ना सही, तुम कुछ और कर लो, जरूर तुमने बच्चों की गंदगी साफ करनी है, तुम सोसाइटी की गंदगी साफ करो। सेल्फ सेंटर्ड लोग जो होते हैं ना, वो कभी भी खुश नहीं रह सकते, और वो दूसरों के काम के भी नहीं होते। कभी इनको माइग्रेन होगा, कभी सर में दर्द होगी, कभी पाँव में दर्द है, आज ये चेकअप है, कल वो चेकअप है, आज दांतों का है, कल बाजुओं का है, कल कोहनियों का, परसों नाखूनों का, परसों उसके बाद कुछ है, खुद को सजाते हैं। इतना रेनोवेट अगर आज हमने इस्लाम को किया होता जितना आज खुद को करते हैं, और जितनी अपॉइंटमेंट्स हमारी अपनी जाती हैं, इतनी अगर इस्लाम की मीटिंग होती कि क्या किया जाए, तो आज इस्लाम सेहतमंद होता, आज उम्मत मुस्लिमा वाकई वो सांस ले रही होती जिसकी जरूरत है लेने की, तो अल्लाह ताला कुर्बानियों को जाया नहीं करता। अल्लाह बेटे भी देते, फिर पोते भी, फिर सवाले भी बना दिया, और हमने इनको इमाम बना दिया जो हमारे हुक्म से रहनुमाई करते थे। दुआ करें अल्लाह हमें वो औलादे दे दुनिया में इमाम बने। वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, आगे पढ़ेंगे हम सूरह फुरकान की एक आयत में, कि अल्लाह वो औलाद दे जो दुनिया के लीडर बने और जो हमारे हुक्म से रहनुमाई करते थे। इसको नोट कीजिए, वो लीडर नहीं थे कि जो अपनी मनमानियां करते हैं, वो दुनिया अल्लाह के निजाम को लगाते थे, और हमने इन्हें वही के जरिए नेक कामों की और नमाज कायम करने की और जकात देने की हिदायत की। वकानु लना आबिदीन, और वो हमारी इबादत गुजार थे। अल्लाह हमें भी इबादत गुजार बना, अब्दियत का जज्बा दे दे कि हम तेरे बंदे बन जाएं। और उसके बाद फिर वलूत अन्नातैनाहु हुक्मं व इल्मा, और लूत को हमने हुक्म और इल्म बख्शा, और उसे उस बस्ती से बचाकर निकाल दिया जो बदकारियां करती थी। अल्लाह हमें भी ऐसी बस्तियों से निकाल जहाँ शैतान हमारे लिए ये काम करता हो। दर हकीकत वो बड़ी ही फासिक कौम थी। लूत अलैहिस्सलाम को हमने अपनी रहमत में दाखिल किया, वो सालेह में से था। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह जैसे लूत को उस गंदे काम करने वालों से बचा लिया, आज उम्मत मुस्लिम को बचा ले, हमारी नस्लों को, हमारी औलादों को होमोसेक्सुअलिटी की गंदगी से बचा ले। और किस तरह से अल्लाह तू हम कर, ये तेरा काम है, हमसे बस तू तड़प के दुआ करवा ले, और इस दुआ को तू कबूलियत दे दे। और उसके बाद एक और खूबसूरत किरदार, और यही नेमत हमने नूह को दी, याद करो जबकि इन सब से पहले इसने हमें पुकारा था। किन से पहले? ये सारे अंबिया कराम जिनकी बातें हम अभी पढ़ते सुनते आ रहे हैं, और हमने इसकी दुआ कबूल की और उसे और उसके घर वालों को कर्बे अजीम से निजात दी। आप कह लीजिए कि हजरत नूह का गम क्या था? वो कर्ब ये था कि चारों तरफ शिर्क आम है, चारों तरफ गुनाह आम है, चारों तरफ बुराइयां आम है, और एक सफाई पसंद इंसान गंदे माहौल में नहीं रह सकता, ये तो आप भी गवाही देंगे। आपको किसी ऐसी जगह पर रहना तो पड़े जहां चीजें बिखरी, गंदगी, खराबी, बैड स्मेल, आपका सांस घुटने लगेगा। इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपने इर्द गिर्द खराबियां देखी तो उनको मुश्किल लगा। और याद रखिए, गुनाहों की चमक दमक कर्बे अजीम बन जाती है जब ईमान जिंदा होता है। ईमान आपको मुझे इस गंदगी की पहचान देगा। पर हम कहते हैं इट्स ओके, इट्स देयर कल्चर, इट्स फाइन, इट्स वेस्ट दिस, वेस्ट दिस, दिस दिस, नहीं, उनको वो कर्ब लगता था कि लोगों को क्या हो गया, और उस कौम के मुकाबले में उसकी मदद की जिसने मरी आयात को झुटला दिया था, वो बड़े बुरे लोग थे, बस हमने इन सब को गर्क कर दिया। आपको ऐसे लगेगा एल्बम का सफा पलटा जा रहा है, जैसे मेमोरियल बुक होती है ना, मेमोरीज हैं, ये आपके इस बच्चे की, ये उसकी, ये उसकी। अल्लाह ने पहले इब्राहिम का पेज पलटा, फिर लूत का, और अब नूह का पलट के कहा कि थे वो सब खराब लोग, पर मैंने लूत को बचा लिया और नूह को भी बचा लिया, आज भी बचा अल्लाह। देखिए, मुझे और आपको अपने आप को स्ट्रांग करने की जरूरत है। ये हमने खुद डिली डली किया हुआ है, इसलिए अल्लाह की मदद नहीं आ रही, या हार या पार। अब तक अल्लाह के नबी के दौर में 1 महीने से ज्यादा कोई मामला नहीं लटकता था। दैट्स इट, या मुसलमान जीत गए या काफिर जीत गए। ये सदियों पे जो मोहित है ना हमारा, वो मैच ड्रॉ है, कभी इधर सी सॉ चल रहा है, कभी इधर कभी उधर, वो उसकी वजह हम ढीले ढाले मुसलमान हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें सच्चा मुसलमान बना दे। अब एक और शख्स का जिक्र जो अल्लाह के नबी थे, बाप बेटे, व दाऊद व सुलेमान, और इसी नेमत से हमने दाऊद और सुलेमान को सरफराज किया। याद करो वो मौका जबकि दोनों एक खेत के मुकदमे में फैसला कर रहे थे, जिसमें रात के वक्त दूसरे लोगों की बकरियां फैल गई थी और हम उनकी अदालत खुद देख रहे थे। उस वक्त हमने सही फैसला सुलेमान को सुझा दिया, हालांकि हुक्म और इल्म हमने दोनों को अता किया था। सुलेमान और दाऊद, बाप और बेटा, मैं जब इन दोनों का जिक्र इकट्ठा पढ़ती हूँ, मेरे दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह आज उम्मत मुस्लिमा में भी यही मिसालें हों। बाप भी दीन की तरफ भाग रहे हैं और बेटा भी उसमें काम कर रहे हैं। बाप बेटा दोनों भाग भाग के अल्लाह के रास्तों में चलते आ रहे हैं, तो ये खूबसूरत तरीका होता है। यहाँ असल में ये सिखाया कि नेमते अल्लाह देकर भी आजमाता है तो लेके भी आजमाता है। ना नेमतों का मिलना इनाम है, क्योंकि वो भी आजमाइश है, और ना नेमत का छिनना अल्लाह की तरफ से है। तो ये बादशाह भी थे, नबी थे। हजरत दाऊद से पीछे आपको मैंने सुनाया था सूरह बनी इसराइल के शुरू में कि इनका अरूज शुरू हुआ था। ये वो दौर था कि गुर्बत खत्म होके अब शाही खानदान में नबूवत चली गई थी। अल्लाह ने इनको बहुत कुछ दिया, लेकिन बेटे को बाप से ज्यादा फहम दिया, और फहमे सुलेमानी तो आप जानते ही हैं। इमाम इब्ने तैमिया दुआ किया करते थे कि या मुफहिम सुलेमान फहमनी, ए सुलेमान को फहम देने वाले मुझे भी फहम दे। तो क्या पता चला कि बाज़ुकात आपके बच्चे आपसे ज्यादा जीनियस हो जाते हैं, क्योंकि उनके उससे एक्सपोजर बहुत है, वो जिस माहौल में पढ़ रहे हैं, हमने उस तरह नहीं पढ़ा। हमारे अंदर रिवायात बहुत अच्छी होंगी, एथिक्स बहुत अच्छे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सब्र बर्दाश्त बहुत अच्छा होगा, लेकिन मेंटली बच्चे बहुत स्ट्रांग होंगे। कंप्यूटर उनको चलाना आता है, वो 2+2 पे चलते हैं, आपको कोई भी कुछ कह दे और वो मान जाएंगे, लेकिन बच्चे नहीं मानते, वो दलील मांगते हैं। तो बेटे की काबिलियत को बाप ने अपने लिए दूसरी तरफ नहीं कहा, उसको ये नहीं कहा बैठो चुप करो तुम कल के बच्चे हो। कभी बच्चों को लेट डाउन ना करें, ये जो शर्मिंदा कभी ना करें तू बाप है या मैं बाप हूं, तू माँ है कि मैं माँ हूं, नहीं, आप उनकी समझिए, उनका टैलेंट उभारिए, लेकिन बोल्डनेस के नाम पे बदतमीज नहीं करना। एथिक्स अखलाकियत अपनी जगह, लेकिन अल्लाह ने बेटे को ज्यादा समझ दे दी। और याद रखिए कि ये फहम बड़ी चीज है, क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे दिया हमने सबको था हुक्म और इल्म। अब यहां हुक्म और इल्म को देख लीजिए, तो कहते हैं कि एक शेर अकल को इस्तेमाल करने के लिए 1 टन हिकमत चाहिए होती है, और इसी तरह एक शेर इल्म को एब्जॉर्ब करने के लिए 1 टन हिकमत चाहिए होती है। ये हिकमत मांगिए, और हिकमत क्या है? सही मौके पर सही बात करना, वक्त और वक्त की नौइयत समझना, इस वक्त क्या करना चाहिए। हर एक को इसकी समझ नहीं होती, बाद लोग बिल्कुल अगेंस्ट सोच रहे होते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों चल रहा है, ये क्या हो रहा है, इसको इतना हम लंबा क्यों पढ़ रहे हैं, इसको छोटा क्यों पढ़ रहे हैं, ये जल्दी क्यों, ये देर क्यों, लेकिन इसके पीछे हिकमत है। कुछ चीजें कुरान में एक ही बार आनी है, फिर कर दो जो भी, वक्त 5 मिनट ऊपर होंगे ना, कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स फाइन, इतना ह्यूमन एरर चलता है, लेकिन बात कर लो, और जो बात चलनी है उसको छोड़ो, आगे जाके फिर दोहराई जाएगी। तो हम सब अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें हिकमत दे दे। फरमाए वसख्खरना मा दाऊद अलजिबाल, दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ हमने पहाड़ों और परिंदों को मुसख्खर कर दिया था जो तस्बीह करते थे। क्या मंजर होता होगा, अब यहाँ के पहाड़ और दरख्तों को सोचिए और सब हिल रहे हैं और कह रहे हैं सुबहान रब्बी अल अजीम, कैसा लगता होगा। लेकिन वो करते थे अल्लाह की तस्बीहात, ये सच है, मत सोचिए कि अब लोगों ने मौजज़ों का इनकार किया, कहते ये कैसे हो सकता, नहीं नहीं वो पत्थर की सरसराहट थी, वो पानी के गिरने की आवाज थी। भाई आपको क्या मसला है, क्या पहाड़ नहीं बोल सकते, बताइए इस वक्त क्या बोल रहा है मेरा ये जुबान का एक टुकड़ा, कौन बुला रहा है, चलिए आप बुला के दिखाइए उनकी जो नहीं अल्लाह की तरफ से बोल पाते। गोश्त का टुकड़ा, ये टेप रिकॉर्डर में एक पतली सी रील चलती थी, और सीडी प्लेयर में तो वो भी नहीं है, मैं उसको घंटों देखती थी, इसमें चलता क्या, तेरे अंदर है क्या। और बचपन में टीवी को देखती थी, हाँ इस छोटे से डब्बे में कैसे इतने बड़े बड़े आदमी गए हैं, सोचते थे, मैं खुद सोचती थी, मुझे याद है। तो जिस रब ने गोश्त के लोथड़े को सिखा दिया बोलना, कल हाथ बोलेंगे, जुबान बोलेगी, रान बोलेगी, क्या दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में पहाड़ नहीं बोलते होंगे। तो कभी अल्लाह की कुदरत का इनकार ना करें, इन्नल्लाहा अला कुल्ली शयइन कदीर, फरमाए इस फेल के करने वाले हम ही थे। हमने इसको तुम्हारे फायदे के लिए सिरा बनाने की सनद सिखा दी थी ताकि तुमको एक दूसरे की मार से बचाए। क्या फिर तुम शुक्रगुजार हो? और हमने सुलेमान के लिए तेज हवाओं को मुसख्खर कर दिया जो इसके हुक्म से सरजमीन की तरफ चलती थी जिसमें हमने बरकतें रखी। हम हर चीज का इल्म रखने वाले थे और शयातीन में से हमने बहुत सों को इसका ताबे कर दिया जिसके लिए गौते लगाते और इसके सिवा दूसरे काम करते थे। हाँ लेकिन इन सब कामों के निगरान हम ही थे। बहुत ही खूबसूरत किरदार है बाप बेटे का। इसमें हमारे लिए चंद लेसन हैं एज ए उम्मत वसत और वो क्या है? तकवा और वसाइल जब एक जगह जमा होते हैं तो इंसानियत को खैर मिलती है। हजरत दाऊद को अल्लाह ताला ने लोहे को पिघलाने का फन दिया। उन्होंने उससे बचाव का सामान बनाया क्योंकि अंदर तकवा था। आज इंसान उसी लोहे को गर्म करके वेपन्स बनाती है जिससे लोगों के सीनों में गोलियां चलती हैं। जब तकवा के बगैर हथियार बनते हैं तो बेगुनाह शहरियों पे पड़ते हैं और जब तकवा के साथ हथियार बनते हैं तो सिर्फ उनसे आप अपना बचाव करते हैं जो आपको मारने के इरादे से आगे। आज इंसानियत दुनिया में जो रिसोर्सिस देखती है और उसका मिस यूज देखती है उसकी वजह यह कि उन लोगों के हाथ में जिनके अंदर तकवा नहीं है। और यकीन कीजिए बेस्ट मुस्लिम कौन है? उस दिन हमारी एक मीटिंग थी मैंने उसमें भी ये जुमला बोला और मेरा दिल इस पे इतना जमा हुआ है। मैं कहती हूँ कि हमारे स्कूल का ऑर्गेनाइजेशनल प्लान कितना स्ट्रांग हो कि जो टीम है ना जो हमारे साथी हैं उनके अंदर तकवा हो, ईमान अंदर अंदर से वो कट्टर मुसलमान हो, नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल, नमाज पे, रोजे पे, अपने दीन के रिचुअल्स को नहीं छोड़ना। अंदर उनके इस्लाम है और उनके बाहर गैर इस्लाम हो। कौन सा? जिस प्रोफेशनल तरीके से ये लोग काम करते हैं, वेस्टर्न तरीकों को अपनाएं काम करने में, कमिटमेंट में, उनके सफाई के सिस्टम को बनाए। जब ऐसा गिरो तैयार हो कि अल्लाह से डरते हुए एक बल्ब भी अगर रात को खुला छोड़ दिया अगले दिन आके उसके पैसे स्कूल में डाल दें कि ये हमारी गलती से स्कूल को नुकसान हुआ, इतनी जवाबदेही का एहसास हो। तन्हाई में अकेले में अल्लाह से डरें लेकिन काम जब करें तो वो प्रोफेशनल हो। कह लीजिए कि दीन का काम प्रोफेशन तो नहीं बनाना लेकिन प्रोफेशनली करना। मिशनरी जील से काम करने वाला एक गिरोह तैयार हो जाए फिर आप जिए या मरें, जहां मर्जी जाएं अल्लाह उनसे काम ले लेगा। आज हम मुसलमानों ने उन लोगों के हाथ में प्रोफेशनलिज्म दिया हुआ है जिनके अंदर ईमान नहीं है और ईमान वाले बेचारे अलग बैठे हैं। क्या आपको मुझे एक आइडियल कॉम्बिनेशन नहीं लाया दाऊद और सुलेमान की सूरत में दिखाता? दीन की दौलत भी है, दुनिया की भी दौलत है, महल भी है, पहाड़ भी है, सब कर रहे हैं और साथ साथ इबादत भी कर रहे हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम इबादत सुनिए, अल्लाह को सबसे पसंद थी, रात का कुछ हिस्सा सोते फिर इबादत करते फिर सोते फिर इबादत करते फिर सोते, गफलत की रात नहीं थी। आपने फरमाया अल्लाह को सबसे प्यारा रोजा दाऊद का रोजा लगता है, एक दिन रोजा रखते एक दिन इफ्तार करते। आज ये तस्वुर है, जरा आप एक ख्वाब तो देखिए कि इमाम साहब मस्जिद में आए, जल्दी से नमाज पढ़ाई, लोग बाद में बात करते हैं अच्छा ओके नहीं आई हैव टू गो बिकॉज मुझे एटम पर रिसर्च करनी है, आई एम गोइंग टू माई लेबॉरेटरी। तस्वुर भी आता है, क्या खूबसूरत वो दौर होगा जब ऐसे इमाम मस्जिदों में आएंगे जो नमाजों के बाद जाके लैब्स में बैठ के काम कर रहे होंगे, जो हुबल पे काम कर रहे होंगे और जो दुनिया को एटम की रिसर्च करके दिखाएंगे। जब तक ये दो चीजों को एक जगह नहीं करेंगे बात नहीं बनेगा। और आज लोग कहते हैं अल्लाह काफिरों को तबाह कर दे, अल्लाह बर्बाद कर दे, बिजली गिरा दे इनके मुल्कों पर। इमेजिन तो कीजिए आज जितना सेटेलाइट सिस्टम है और जो दुनिया को इन्वेंशन मिली, अगर बिजलियां पड़े और ये सब तबाह हो जाए, कोई एक मुसलमान है जो उनकी जगह उनकी जॉब्स पे जाके खड़ा हो जाए? इस काबिल हैं आज हम मुसलमान के दुनिया का निजाम चला सके? हम तो अपने मुल्क नहीं चला सके, दुनिया का निजाम कहां लेंगे? कभी आप इन लोगों को काम तो करते देखा करें। मुझे लगता है कि इस मुल्क में तो मट्टी होती नहीं होगी, इनके तो कुर्सियां टूटती नहीं होंगी, वजह क्या? काम करते हैं, काम करते हैं। हमने पीछे किया हुआ अपने आप, ये काम हमने करने थे तकवा के साथ या इनको इस्लाम दिला दे। और यकीन करें मैं बात बहुत बड़ी कहने लगी हूं लेकिन बात सच है, इस्लाम उस दिन खूबसूरत होगा जब वेस्ट के ये लोग जो प्रोफेशनली दुनिया में काम करें ना वो मुसलमान होंगे। अब यह दिन तो करें जो काम ये करते हैं कैसा अच्छा करते हैं, जिस दिन ये मुसलमान होकर इस्लाम फैलाएंगे फिर कैसा फैलाएंगे। और इसकी झलकियां आपको न्यू मुस्लिम रिवॉर्ड्स की कोशिशों में दिख रही हैं क्योंकि उन्होंने प्रोफेशनलिज्म सीखा हुआ है। मुसलमान हुए तो प्रोफेशनली मुसलमान हो गए। हमने चूंकि शुरू से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या अपने बेचारे कॉम्प्लेक्स कंट्रीज में जिनको एहसास कमतरी पड़ा है उसमें आंख खोली, कोई काम चूंकि पूरा नहीं करते तो वो भी नहीं करते, कोई करने लगे कहते छोड़ो क्या जरूरत है, मस्जिद है इस फाइन, चलने दो, चलती है कुर्सी, जो भी ले आओ, जिस रंग की ले आओ, टूटी भी ले आओ, नीचे ईंट रख देंगे। हमारा हाल आज इस्लाम को फैलाना है, खूबसूरत बनाए। यकीन करें आप इतने अच्छे माहौल में यहाँ बैठते हैं, हम इसका अल्लाह का लाख लाख शुक्र कर सकते हैं, हक नहीं अदा कर सकते इस जगह का। फिर भी हर दिन मैं एक एक चीज पे सोचती हूँ कि इंशाल्लाह इससे भी अच्छी होती तो अच्छा होता, इससे भी अच्छी होगी तो अच्छा और होगा, कि आपको कंफर्ट मिले, आपको सुकून मिले, आप और अच्छा सुधे। क्यों? क्योंकि जब तक हम अपनी क्वालिटी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करेंगे, हम लोगों को इस्लाम की खूबसूरती दिखा नहीं सकते। पंप एंड शो इस्लाम नहीं चाहता। ये नहीं कहता कि इतने नरम गद्दे बिछा दो के सारे सो जाए, इतनी सर्दी कर दो कि सब ऊँगने लग जाए, लेकिन कम अज कम इस्लाम को उसका ड्यू हक तो दें, और इसकी जरूरत है। इसको शुरू से अपनी नमाज से शुरू कर लें। मुझे अपनी नमाज आसन दर्जे की करनी है। आज मैं अपनी जाती नमाज अच्छी नहीं पढ़ रही, मैं कल नमाज की जगह कैसे अच्छी बनाऊंगी? आज मेरा घर अच्छा नहीं है इस्लाम के नाम पे, कल दीन का इदारा मैं कैसे अच्छा चलाऊंगी? आज मेरा घर उलझा पुलझा खराब बिगड़ा टिगड़ा, तो कल मैं दीन के नाम पे इदारे को कैसा टेढ़ा मेढ़ा रखूंगी? तो जब तक ये चीज हमारे दिल में नहीं आएगी, इस्लाम नहीं बन पाएगा। तो आप देखिए, पढ़े लिखे लोग इस्लाम को पकड़ेंगे, लोगों को इस्लाम पढ़ा लिखा लगेगा। मॉडर्न लोग इस्लाम को पकड़ेंगे ना, इस्लाम पढ़ लगेगा। खूबसूरत लोग इस्लाम को पकड़ेंगे, खूबसूरत लगेगा। ये फितरी बात है, जिसके हाथ में चीज होती है वैसी सजती है। एक ही कपड़ा एक पहनता उसको बहुत अच्छा लगता है, दूसरे को नहीं जचता। हमें जरूरत है इस वक्त इस्लाम को खूबसूरत लोगों की। क्या सबको खूबसूरत चाहिए? इस्लाम को नहीं चाहिए। अब खूबसूरती से मेरा फीचर्स की खूबसूरती नहीं है, डिसेंट मुहज्जब बात करने वाले, तरीके वाले, सलीके वाले, ऐसे लोग जो दूसरों को देखे कि माशाल्लाह कम वेलकम दिस दैट, वो ऐसे वेलकमिंग हो कि लोग उनको देख के सीने से लग जाए कि इतने अच्छे लोग हैं। माथे पे तेवरियां पड़ी, बिखरे हुए, घबराए हुए, पैनिक क्रिएट किए हुए लोग क्या इस्लाम का नजरिया देंगे? इसलिए आज मुझे और आपको नियत करनी है कि अल्लाह मेरे जरिए इस्लाम को इज्जत दे, अपनी जिंदगी की हर खूबसूरत चीज इस्लाम के रास्ते में लगे। और ये सदका है उस बात का कि अल्लाह आज के दौर में मैं इस्लाम को इज्जत देने के लिए ये करती हूं, कि लोगों को पता चले इस्लाम मंगता नहीं है, इस्लाम भूखा नंगा नहीं है, इस्लाम बेढंगा भी नहीं है, गरीब भी नहीं है। इस्लाम गरीब तो है ही कोई नहीं, क्योंकि उसका रब बहुत बड़ा। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ध। तो जब ये सारी स्किल्स हम जमा कर लेंगे, इंशाल्लाह फिर देखिए दुनिया में चेंज आएगी, और ये चेंज देखिएगा वेस्ट से आएगी, ये तो मान लीजिए। आखिरत में कहते हैं जैसे सूरज मशरक की बजाय मगरिब से निकलेगा ना, इस्लाम का सूरज भी मगरिब से निकलेगा। और ये आप और मैंने कोशिशें करनी है। आज मैंने और आपने ऐसी नस्लें पैदा करनी है कि यहां से अबू बकर उठेंगे इंशाल्लाह, जो इस्लाम के सपोर्टर बनेंगे, यहां से उमर फारूक निकलेंगे कि जिनके मुसलमान पे पूरे ग्लोब पे लर्जा तारी हो जाएगा। फिर लोग यहां आएंगे इस उमर को मिलने कि इस मुल्क में उमर रहता है, हम देख के आए। और वल्लाह ही ये होगा, मैं करूं ना करूं, आप करें ना करें, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा वदीन अल हक लियुज़हिरहु अल दीन कुल्ली। या फिर हम अपने मुल्कों को ठीक कर लें। मैं इसमें अपने मुल्कों की या उन मुल्कों की बुराई नहीं कर रही, लेकिन मैं हालात पे क्यास करते हुए कहती हूं, जब तक हम अपनी सड़कें ठीक नहीं कर रहे, हम अपने गढ़ ठीक नहीं कर रहे, हम अपने इदारों को रिश्वत से पाक नहीं कर रहे, किस इस्लाम को आप वहां लेकर आएंगे? पहले आप खुद को कूल काम कीजिए। और इसके लिए मुझे और आपको अगर ये ऑनर मिल रही है कि अल्लाह गैर मुल्कों में, गैर इस जगह के जहां कुफर के झंडे लगे हैं, हमारी इतनी पुरअमन, इतनी पुरइत्मीनान कोशिशों से उन गरीबों को भी तो इस्लाम मिल जाए जो जहन्नुम में जा रहे हैं और उनको पता नहीं शराब की बोतल मुंह में लेके मरते हैं। मुझे तो दर्द उनका ज्यादा है। उम्मत तो बिगड़ी है, सो बिगड़ी है, हमारे बिगड़ने का एक नुकसान हुआ कि लोगों ने इस्लाम से नफरत शुरू कर दी। वल्लाह ही आपको पता है, तारीख को खोल के तो देखिए, जहां से मुसलमान गुजरते थे लोग मुसलमान हो जाते थे, उनके किरदार को देखे। आप बरेसगीर पाक को इनकी हिस्ट्री पढ़ लीजिए, मोहम्मद बिन कासिम के नाम का बुत बना हिंदुओं ने अपने मंदिर में रखा हुआ था। ये राजा दाहिर के जुल्म और सितम के थके हुए लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम को वोट दिए थे। सिर्फ मुसलमानों के वोट से वो नहीं जीता था, हिंदुओं ने भी दिए। क्यों? कहते थे हमें ये पता है कि तू है अच्छा आदमी और इतनी खूबियों से एक इंसान नहीं हो सकता, ये भगवान है, उसको पूछने लग गए। लेकिन अल्लाह ने, आप देखिए कि उसकी किरदार में थी ना बात, इंसाफ कायम किया, अदल कायम किया। हजरत उमर को कितने लोगों ने क्रेडिट दिया, आप जाके हजरत उमर पे बुक्स तो पढ़िए। कहते थे क्या उमर तो इसलिए इत्मीनान से सो रहा है, आधा जिस्म धूप में आधा छांव में उमर सो रहे हैं मस्जिद नबी पे फ्लोर पे। और एक दूर से शख्स आया कि किधर है, जरा मैं देखूं उमर को मिलूं। चलते चलते इधर उधर आए मस्जिद नबी में, देखे एक शख्स गहरी नींद सो रहा है। किसी से पूछा ये कौन है? कहा लगता है तुम्हें शहर में आए हो, तुम्हें नहीं पता ये हमारे अमीरुल मोमिनीन है, आज के दौर में ये मेरे प्रेसिडेंट साहब है, ये प्राइम मिनिस्टर साहब है। कहा ये उमर है? फिर कहने लगा ये वो उम्र है कि जिसने कैसरो किसरा की नींदें उड़ाई हुई हैं रातों की। दूर बैठे वो उस वक्त के सुपर पावर्स के सर बड़े उससे खौफ खा रहे हैं, वो सो नहीं पा रहे और उमर तू इतनी गहरी नींद सो रहा है। फिर कहा उमर तू इसलिए सो रहा है कि तूने अमन कायम किया, तूने अदल कायम किया, और वो इसलिए बेचैन है कि उन्होंने दुनिया में जुल्म और बर्बरियत की। तो सोचने की बात है। और आज जो आपको मुझे ये गैर मुस्लिम मुल्कों में जो अमन सुकून मिलता है ना, उसकी वजह उनका कुफर नहीं है, ये भी समझ लीजिए बड़ी गहरी बात है। हम सोचते हैं चूंकि ये मुल्क काफिर मुल्क है इसलिए ये बड़े साफ है, चूंकि ये नॉन मुस्लिम मुल्क हैं तो ये बड़े तरक्की कर रहे हैं और ये इन टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, और चूंकि ये कपड़े कम पहनते हैं तो ज्यादा ही इनको काम करने का मौका मिलता है, ये वजह नहीं है। इन मुल्कों में अमन चैन जिधर भी है, मैं इस एक मुल्क की नहीं बात कर रही, माशाल्लाह अच्छी बात है तो करनी चाहिए, जिस मुल्क में भी आपको दुनिया में अमन चैन दिख रहा है उसकी वजह है क्या, कि वहां अदल है, वर्क की हेल्प है और आपकी प्रेस्टीज है। गरीब अमीर का वो फर्क नहीं, आप वॉलमार्ट पे जाएं कहीं अमीरों का खाना है ये गरीबों का खाना है, आप देखिए आपकी मेड यहां से आपसे काम करके जो स्टोर से दूध का डब्बा लेती वही आप ही लेते हैं, जो फ्रूट का पैक वो पकड़ेगी वही आप पकड़ेंगे, सिर्फ चॉइस है आपको लेना क्या। आपको इतना डिग्रेडेड फूड नहीं दिखेगा, हमारे मुल्क वाला हाल नहीं दिखेगा कि ये बड़े लोगों के स्टोर्स हैं ये छोटों के, और ये फटा हुआ खट्टा हुआ फ्रूट इसको दे दो और ये अच्छा वाला उनको दे दो, ये जुल्म है हमारे पास। तो इमाम इब्ने तैमिया का गालिबन कौल है, कहते हैं कोई हुकूमत कुफर पे कायम रह सकती है, जैसे दुनिया में आज बहुत सारी कुफर पे हुकूमतें चल रही हैं, लेकिन जुल्म पे नहीं कायम रह सकती। जिस दुनिया के खित्ते से जुल्म और बर्बरियत को आप खत्म नहीं करेंगे वहां इस्लाम नहीं आएगा। आप सारी मस्जिदों में कुरान शुरू कर दें कर दें, तो लिहाजा आइडियल वक्त है, आइडियल माहौल है उन मुल्कों में दीन को फैलाना जहां हकीकत में दुनियावी सुकून है। लोग कहते हैं ये मुस्कुराते बहुत है, मैंने ऐसे किसी से कहा कि इन मुल्कों में आए तो सब स्माइल देते हैं, तो मुझे किसी ने ताना ही दिया कहने को, कहती पेट जो भरे हुए तो मुस्कुराएंगे तो और क्या करेंगे, हमारी मुस्कुराहट है तो हमारी गुर्बत ने ली हुई है। बात सच है क्या, आप अपनी जगह पे बैठे हैं, आपको होता है आपको 10 15 20 डॉलर घंटे के मिलने, आप हर क्लाइंट को स्माइलेंगे, स्माइल हाउ यू डूइंग, नाइस थैंक, प्लीज टेक योर सीट, मजा आएगा। तो जो जले कुटे बैठे हैं जिनको पता है घर जाके भी मार पड़ने को, जल्दी करो नेक्स्ट, चलो चलो भागो, लेफ्ट ही नहीं को कराता आपको अपने मुल्कों में चले जाए। शुरू में हमेशा नो कहते हैं, ये तो मैंने कई जगह जाके देखा, शुरू में आपको डिस्करेज करेंगे चलो जाओ, फिर जरा आप थोड़ा एक दो दफा जाके धक्के खा के एक दिन गुस्से में वहां बोलेंगे ना अच्छा अच्छा बैठो बुलाओ अपने मैनेजर को, फिर वो आपको अंदर ऑफिस में ले जाएंगे, भाई माफ करें बिजली बहुत है गर्मी है इनकी, आप बताएं मैं आपका मसला हल करता हूँ। ये हालात जब होंगे तो इंसान नहीं होगा, इस्लाम नहीं आएगा। तो दुआ कीजिए कि हम कुछ करते हैं, बातें तो हमने बहुत सारी कर ली लेकिन अल्लाह हमसे अमल करा ले, और मुझे यकीन है ये बातें रायका नहीं जाएंगी। ये वो दर्द है कि जिसको मैं कहती हूँ पूरी दुनिया में फैला दें, और इसमें सिर्फ सिर्फ अमन का मैसेज है। आप इस पूरे प्रोग्राम को सुन लें, आपको कहीं बर्बरियत जुल्म और तशद्दुद की बात नहीं मिलेगी, हर जगह आपको यही सिखाया जा रहा है कि आप कलम उठाएं, लोगों को दीन दें, इस्लाम दें और खुद अमल करें। जितना हम करते जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी मदद करेंगे।